है। अब हमारा कोशिश ये होगी कि क्वेश्चन आंसर सेशन हो आपकी तरफ से, आप कुछ क्वेश्चंस करें ताकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के जो इसके अंदर खाली रह गए हैं और उनके ऊपर अभी बात नहीं हो पाई है उनको डिस्कस किया जाए और इंशाअल्लाह उसको किसी तरीके से पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। इसी दौरान में मैं ये भी अर्ज करूँगा कि अगर कल के लेक्चर्स के हवाले से भी आपके जहन में कोई सवाल आता हो, कोई चीज़ आती हो जो आप कहना चाहते हैं, तो उनमें से भी आप कह सकते हैं। और आज के जो दो लेक्चर्स हुए सईद शहदा की करबला के हवाले से, इनके हवाले से भी अगर कोई सवाल आपके जहन में आते हैं तो आप बयान फरमाइएगा। दुरूद भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद।
मौलाना इधर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से हमें मौलाना तौफीक अल्लाह के ने दिया है कि आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे हो रही है, बचपन से हम मतलब ये कर रहे हैं। लेकिन अब मतलब ज़्यादा दबाव ये रहा है कि ये इस पैगाम को अंदर काफ़ी रखा गया है, मसलन अदारे के अंदर ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उनका गम भी मनाना और सब कुछ, ये तो बहुत बड़ी एक खजाना है अल्लाह की ज़ात ने जो दिया है। लेकिन क्या हमारी ये भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये पैगाम अब हम बाहर भी मसलन जुलूस के तहत एक अच्छे मुनज़्ज़म जुलूस के तहत निकालें, इसके बारे में मतलब इसको बाहर कितना ज़रूरी है इसको निकालना और किस तरीके से हम कर सकते हैं?
असल में जो मुझे बात समझ में आती है, थोड़ा सा मैं इसकी डिटेल्स में जाऊंगा, वो ये कि जो इब्तदाई तौर पर लोग यहाँ पर आते थे, चाहे वो नॉर्वे हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जो लोग इब्तदाई तौर पर आते थे वो एक बहुत बड़े माशरे के मुकाबले में 4 अफराद 5 अफराद 10 फैमिलीज इस तरह होते थे। तो उनकी सबसे पहली कोशिश ये होती थी कि वो अपने अंदर अपने दीन को बाकी रख सकें, उनकी पहली कोशिश ये होती थी। मसलन मुझे किसी ने बताया कि पर्थ के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में 3 फैमिलीज, कहने के कि 3 फैमिलीज थी, वो भी बड़ी मुसीबतों से, कहीं मुश्किल से पता चला कि वो भी अहले बैत का मानने वाला है, वो भी चाहने वाला है, जमा हो जाया करते थे। और मसलन उनमें एक आध मसलन अहले सुन्नत में से भी हैं, कोई अहले शिया हैं, वो सब अहले बैत के नाम पर जमा हो गए। तो कहते थे कि हम मसलन शब जुम्मा को हदीस किसाब पढ़ लिया करते थे, कोई एक मरसिया पढ़ लिया करता था, कोई एक जिक्र कर लेता था। इन लोगों के सामने जो पहला टास्क था वो ये था कि अज़ाए सैयद शहदा को, अपने दीन की अलामतों को अपने अंदर किसी तरीके से महफूज कर लें। अच्छा, हम लोगों के साथ मामूलन ये मुश्किल पेश आती है कि हम चैलेंज को जो बाद में आने वाला होता है उसको फोर्सी नहीं कर पाते। तो हम लोगों की जो प्लानिंग का फुकदान है वो यहीं पर है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मसलन इन सोसाइटीज को जिनमें प्लानिंग होती है तो वो ये सोचकर रोड नहीं बनाते कि आज कितनी गाड़ियां गुजरनी है, वो ये सोच के बना रहे होते हैं कि 30 साल बाद तक जितनी गाड़ियां गुजरनी है उसके लिए आप एक रोड बना लें, वरना आपके हर अगले साल के बाद फिर एक नई रोड बनाएंगे। तो वो लोग आगे को देखकर बना रहे होते हैं। हम लोगों के साथ जो मुश्किल पेश आती है, हम जो उस वक्त चैलेंज होता है बस उसको एड्रेस करते हैं। अच्छा, उस वक्त का जो चैलेंज था वो क्या था? वो ये कि भाई 15 आदमी 15 फैमिलीज 30 फैमिलीज 20 फैमिलीज आई है अपने मुल्क से उठकर, वो उनके पास ना कोई रस्म बाकी रही है ना कोई दीन बाकी रहा है, तो वो ये किसी तरीके से बाकी रख लें। ये जो सेंटर्स बने ये मामूलन इस दिफाई हिकमत अमली के ऊपर बने, इस दिफाई हिकमत अमली के ऊपर कि भाई हम अपने दीन को अपने अंदर किस तरीके से बाकी रखेंगे। उनकी ओरिएंटेशन में था ही नहीं कि हमने बाकी लोगों को पैगाम कैसे देना है, बाकी अपने मुल्क के अंदर पैगाम कैसे देना है। अच्छा, उस वक्त ये था कि मसलन जबान भी नहीं जानते थे, वसाइल भी नहीं थे, तो उनके पास ये टॉपिक था ही नहीं कि हमने ये काम भी करना है। अच्छा, उसके बाद 15 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, वो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसकी सेकेंड जनरेशन आ गई, वो जो सेकेंड जनरेशन थी वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड थी अपनी सोसाइटी के साथ, मसलन उन्हीं के स्कूल में पढ़े हैं, उन्हीं की जबान को जानते हैं, उन्हीं के लबो लहजे में बात करते हैं। अब इनके सामने एक नया चैलेंज है, इनके सामने चैलेंज ये नहीं है कि हमने अपने अंदर अपने दीन को कैसे बाकी रखना है, इनके सामने अब चैलेंज ये है कि हमने दूसरों को ये पैगाम कैसे पहुंचाना है, दूसरों तक ये पैगाम कैसे पहुंचेगा। तो मुझे ये समझ में आता है कि वो ग्रुप के जो ये कह रहा होता है कि हमें अपने अंदर रखना है, वो अपने तकाजों को देख रहा होता है जो उसके दौर के अंदर रिक्वायरमेंट थी, और जो यूथ कह रहे होते हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होते हैं कि हमारा मामला ये नहीं है कि हमें अपने अंदर कैसे रखना है, हमारा मामला यह है कि हमें बाकी माशरे को कैसे अवेयर करना है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? ये जो यूथ्स हैं वो बाकी सोसाइटी के साथ टच के अंदर है, और वो जो पिछले जनरेशन थी वो बाकी सोसाइटी के साथ टच में नहीं थे। अब आप तसव्वुर करें, मसलन ये जो पिछली जनरेशन में आए हुए लोग थे, ये वीकेंड्स पे कहां जाते थे? नॉर्वेजियन सोसाइटी के पास जाते थे या अपने दरमियान हल्का अहबाब बना के बैठते थे? हमेशा अपने अंदर हल्का अहबाब बनाकर। क्यों? वो उनके साथ इंटीग्रेटेड नहीं थे, उनके साथ कोई रब्ता नहीं था उनका। मैंने उसके जबान में मुश्किल से जानते थे। अब जो यूथ्स आए हैं उनके सामने एक नया चैलेंज आया और वो ये देख रहे हैं कि अब हमारे पास ताकत है। यानी ताकत किस चीज की है? वही कि आइडिया हमारे पास है। अच्छा, एक और भी बात मैं अर्ज करता चलूं, 30-35 साल पहले हकीकत अगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, बहुत ज्यादा दीन को जानते भी नहीं थे। मैं आपको अपनी मिसाल अर्ज कर रहा हूं, 28 साल पहले 1984 के अंदर मैं तालिबे इल्म बना था और मैं आईएसओ में था, ठीक ठाक एक्टिव भी था, सही है, और मुझे नहीं पता था दुआए नदवा क्या होती है। आप क्या समझ रहे हैं 30-35 साल पहले लोग जानते थे इन चीजों को? मैं आपको मुतमईन होकर अर्ज कर रहा हूं, 30 साल पहले लोग दुआए सलामती इमाम जमाना नहीं जानते थे। हम लोग जो ज्यादा से ज्यादा दुआ जानते थे वो इलाही अदुमल बलाओ, जो वो भी आईएसओ वगैरह की वजह से जो उन्होंने प्रिंट करा करा कर दिए थे तो हमें पता चला था। 30-35 साल पहले लोग तखलीक जानते थे क्या? असल में दीन से बहुत कम जानते थे। नतीजा ये कि वो मसलन नॉर्वेजियन सोसाइटी को क्या देते, कौन से मआरिफ देते, कौन सी आगही देते? अब हमारे सामने एक और दास्तान आती है, वो क्या है? वो ये कि आप एक आपके पास एक पूरा निजाम हयात है। मसलन आपकी जमहूरी इस्लामी बने हुए 30 साल से ऊपर क्या था फिर आपके पीछे? आपसे कोई पूछता कि भाई तुम्हारा निजाम हुकूमत क्या है, 30 साल पहले कोई क्या कहता था मेरे पास क्या निजाम हुकूमत है? अब आपके पास टॉपिक्स हैं। क्या अब आपने मसलन गवर्नमेंट के मसाइल में भी काम किया हुआ है, आपने अदालत के मसाइल में भी काम किया है, सियासत के मसाइल में भी आपके पास कुछ चीजें हैं? तो आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं इस बात में मुकम्मल आपकी तारीफ करूंगा कि अब वक्त सिर्फ इस बात का नहीं है कि हमने दिफाई अंदाज में अपने अंदर अपने चंद खानदानों के अंदर दीन को कैसे महफूज करना है। अब वक्त है, आपके पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपके पास फिक्र है, आपके पास जबान है, आपके अंदर आपके पास माशरे के अंदर एक स्टेटस है। अब आपको इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचाना है कि भाई ये दीन इन तक कैसे पहुंचेगा। और ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अगर ये ना किया होता तो क्या पाकिस्तान में किसी को मुसलमान होना चाहिए था? हिंदुस्तान में किसी को मुसलमान होना चाहिए था? मसलन हिंदुस्तान में क्या इस्लाम उतरा था? यहाँ पे इस्लाम नहीं उतरा था। चंद फैमिलीज वहां से माइग्रेट करके यहाँ पर आई थी। जब वो माइग्रेट करके आई तो उन्होंने क्या किया था? अपने अंदर दीन को महफूज किया था या दूसरों तक पहुंचाया था? अगर दूसरों तक ना पहुंचाया होता तो हम में से बहुत सारे लोग मुसलमान नहीं होने चाहिए थे। फिर मुसलमान नहीं होते हम लोग। उन्होंने ये जुरात दिखाई, उन्होंने कहा नहीं, हम दूसरे माशरे के अंदर गए हैं लेकिन दीन को अपने अंदर नहीं रखेंगे, हम दीन को फैलाएंगे। अभी इंडोनेशिया, मलेशिया, हिंदुस्तान, ये सब ये कहां से मुसलमान हुए? ये दूसरों के जो लोग आए थे उन्होंने इस्लाम को पहुंचाया तो मुसलमान हुए। आज अगर मैं आपके सामने कहूं कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप नॉर्वे को पूरे को मुसलमान करें तो मुमकिन है कोई ये कहे कि भाई ये एक्सट्रीमिज्म है, मुमकिन है ऐसा कोई क्रिश्चियन सुने और वो ये कहे कि भाई आप हमारे दीन पे हमला करना चाहते हैं, ये सारी बातें कहें। लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं बिल्कुल वही बात कह रहा हूं जो मलेशिया के अंदर चंद सौ साल पहले हुई है, जो इंडोनेशिया के अंदर हुई है। ये लोग मुसलमान नहीं थे, इनको आने वालों ने दीन दिया और इनकी नस्लों ने अपने इरादे इख्तियार से बगैर किसी जंग के, बगैर किसी जबर तशद्दुद के दीन को कबूल किया। आपको और मुझे यही करना है। ये कोई अनोखी बात नहीं कह रहे हैं हम, ये कोई अचंभे की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है? क्या मलेशिया में नहीं हुआ है? इंडोनेशिया में नहीं हुआ है क्या? क्या मसलन दूसरे मिस्र के अंदर, अफ्रीका के अंदर नहीं हुआ है क्या? हुआ है। अगर हुआ है तो यहां क्यों नहीं हो सकता फिर? और हम पहले तो इतनी मैंने अर्ज किया, हमारे पास इल्म नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह इल्म है, हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। तो आपकी बात की मैं 100% तायद करूंगा। वो कि अब हमारी ओरिएंटेशन ये होनी चाहिए कि हम ये दूसरे माशे हमारे पास मौजूद हैं, अल्लाह का दीन हमारे तक पहुंचा हुआ है, हमें उस दीन को, उस फिक्र को लेकर दूसरों तक पहुंचना है, इनको भी बताना है कि भाई ये दीन क्या है, इन तक दीन को पहुंचा कर अपनी जिम्मेदारी को इंशाअल्लाह अंजाम देना है। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद।
محمد وعلي محمد وعجل فرج